मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार दोस्तों। मुख्य विषय के तहत आज हम लोग उच्च शिक्षा में प्रवेश को लेकर के अभी जो एक नया नियम आया है उस पर कुछ बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ थोड़ी सी जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं वे मैं करना चाहूँगा। पहली बात तो यह कि कल मैंने एक किताब के बारे में, कश्मीर पर लिखी गई किताब के बारे में चर्चा की थी, उसमें मुझे थोड़ा सा करेक्शन करना है, और करेक्शन यह करना है कि जो पुस्तक है उसका नाम है Our Moon Has Blood Clots। अगर आपने मेरी बात को सुनने के बाद नोट किया हो तो आप देख लें, यदि यही लिखा है आपने तब तो ठीक है, अदरवाइज उसे करेक्ट कर लें। Our Moon Has Blood Clots, और इसके जो राइटर हैं वे हैं राहुल पंडिता, इसे भी करेक्ट कर लें, इसके राइटर हैं राहुल पंडिता। आज मुझे कुछ बातें थोड़ी सी अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से करनी है, उन स्टूडेंट से जो अब 27 तारीख की क्लास अटेंड करने के लिए भोपाल आने की बिल्कुल तैयारी में हैं। तो मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि मुझे उनसे बात करने की अनुमति दें। मेरे प्यारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप सब आने के लिए अब तैयार हो रहे होंगे। इससे पहले मैं दो बार आपसे बात कर चुका हूं, और अब इससे पहले कि हम लोग मिलेंगे, यह मेरा अंतिम संबोधन आपको है, और मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी क्लासेस एक प्रकार से शुरू हो चुकी हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि अब आपके मन में उत्साह होगा यात्रा करने का, और अगर उत्साह होगा तो मान करके चलिए कि यह यात्रा आपकी बहुत सुखद होगी। सिविल सर्वेंट बनने के लिए केवल पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, एक किस्म की मानसिक टफनेस भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, जो आपके व्यक्तित्व में झलकता रहता है, और इसकी शुरुआत आपके घर से निकलने से ही हो जाएगी। तो मेरी कुछ बातों को आप ध्यान से सुने और उन्हें अमल में लाएं। मैं जो बातें कह रहा हूं वो सुनने के लिए केवल नहीं है बल्कि अमल में लाने के लिए हैं। दोस्तों, जब आप अपने घर से निकलेंगे, मान करके चलिए कि आप एक सुखद यात्रा पर आ रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को आश्वस्त कीजिए कि मैं एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूं और 15 दिन के बाद तो मुझे लौट करके आना ही है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि उनके मन में किसी तरह का कोई भय जैसा, आशंका जैसी बात न रह जाए, और अपने घर वालों को ये बता दें कि हमारी जो क्लासेस चलेंगी प्लीज उस दौरान मोबाइल फोन न करें, आपको बात करने की मनाही होगी। वैसे आप ठीक है क्लास से बाहर निकल करके जा सकते हैं, लेकिन बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि यदि आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपका फोन साइलेंट मोड पर ही है लेकिन घर घर कर रहा है, आप उसे बार बार चेक कर रहे हैं, तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। तो घर वालों को बिल्कुल बता दें कि अगर कोई विशेष बात होगी तो मैं आपको खुद सूचित करूंगा, अदरवाइज रोज यहां आने के बाद उनसे बात कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, लेकिन जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो तब तक वे ट्राई न करें, अदरवाइज वो फिर आशंकित रहेंगे कि अरे फोन नहीं आया, देखो फोन नहीं आया, उन्हें बिल्कुल निश्चिंत कर दीजिए। बहुत खुश मन से आशीर्वाद लेने के बाद आप अपनी यात्रा शुरू करें। अगर आप ऑटो से आ रहे हैं या कैब लेकर के रेलवे स्टेशन तक या बस स्टैंड तक जा रहे हैं तो आपको अब अपना संतुलन बनाए रखना है। अगर मान लीजिए कि ऑटो वाला आपसे दुगने तिगने पैसे मांग रहा है तो आप हमेशा की तरह नाराज मत हो जाइए, अरे तुमने हमको क्या समझ रखा है, तुमने बेवकूफ समझ रखा है क्या, तुम क्या कर रहे हो, इतना भी पैसा लगता है कि नॉट एट ऑल। आप बहुत कूल काम रहिए, शांत रहिए, उसे इत्मीनान से बात कीजिए कि भाई ये देखो ये तो इतने बनते हैं, तुम इतने ज़्यादा क्यों मांग रहे हो, अगर इतना ले सकते हो तो चलो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेंगे। ये आपको करना है, याद रखिए करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने हाथ से कीजिए। आप स्टेशन पहुंच गए हैं, हड़बड़ाइए मत, ट्रेन आएगी, आप आराम से बैठ जाएंगे, दूसरों को पहले चढ़ जाने दीजिए, आराम से, हड़बड़ी मत दिखाइए, अपने अंदर धैर्य रखिए। जब सब चढ़ जाएं आराम से तो आप चढ़ जाइए, अपनी सीट पर बैठिए, फिर देखिए कि आपके आसपास कौन लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे खूब बातचीत कीजिए। सफर को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनसे बातचीत कीजिए, उनके बारे में ज़्यादा पूछिए, उनसे ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, अच्छा आपके यहाँ क्या पैदा होता है, क्या चीज़ें, क्या व्यापार है, आप क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए। और आप यंग हैं, आपके साथ सफर करने वाले लोग आपसे अधिक उम्र के होंगे, वहां महिलाएं भी होंगी, वहां सीनियर सिटीजन्स भी हो सकते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए कि आपको पानी चाहिए, अच्छा मैं ला देता हूं, अच्छा चाय चाहिए, आपको मैं ला देता हूं, उनका ख्याल रखिए, और आप देखेंगे कि आप उनका 10% ख्याल रखेंगे वो आपका 90% ख्याल रखने लगेंगे। आप करके देखिए, आपको जीवन के नए अनुभव प्राप्त होंगे। आप अपनी यात्रा को सुखद बनाइए, महिलाएं और बच्चे हैं तो उनकी विशेष रूप से मदद करने की कोशिश कीजिए। आप जीवंत रहिए, उत्साह से भरे हुए रहिए, ताकि आप उनके केंद्र बन जाएं, लोग आपको पसंद करने लगें, आपके बारे में पूछने लगें, आपसे बातें करने लगें। धीरे धीरे आपके स्टेशन आने वाला होगा। देखिए हबीबगंज स्टेशन पर अगर आपको उतरना है तब उसका नाम रानी कमलापति स्टेशन हो गया है, इसका ध्यान रखिएगा। और फिर भोपाल स्टेशन तो अलग से है ही, ट्रेन रुकेगी, आराम से रुकेगी, आराम से उतरिए, हड़बड़ी मत कीजिए, और उतरने के बाद फिर से ऑटो ले लीजिए और ऑटो के साथ उसी तरह से व्यवहार कीजिए जिसकी बात मैंने की। इसके बाद फिर आपको अपने होटल पहुंचना है, बकायदे आपके पास उनके पते हैं, जानकारियां हैं, फ़ोन नंबर हैं। प्लीज़ अगर आपको वहां तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है तो उसका समाधान खुद ढूंढिए, क्योंकि नंबर आपके पास है। लोगों से पूछिए स्थान कहाँ है, यह होटल कहाँ है, कैसे जाना है। ऐसा नहीं कि आप एकेडमी में सीधे फ़ोन लगा लें और कहें कि भाई हम तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपने कहाँ रख दिया और कहाँ कर दिया, हम इतने परेशान हो रहे हैं। नॉट एट ऑल, इस आदत को छोड़िए, आप खुद कोशिश कीजिए, आप बड़े आराम से होटल पहुंच जाएंगे। भोपाल बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद करेंगे। आप मदद मांगने में हिचकिए मत, लेकिन जो कुछ भी हासिल करना है उसके केंद्र में खुद को रखिए। जाइए होटल में, बकायदे वहाँ जो मैनेजर होंगे उन्हें बड़ी बड़ी विनम्रता से उनसे बात कीजिए, बहुत ही सहजता से बात कीजिए, उनका अभिवादन कीजिए, सर करके बात कीजिए कि सर मैं आया हूँ, ऐसे ऐसे एकेडमी ने एक कमरा बुक किया होगा। वो कमरा खोलेंगे, वहाँ बैरे होंगे, लोग होंगे, उन सबसे आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो बहुत ही मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ आप एक कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। पहुँचने के बाद सबसे पहले अपने घर फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं अच्छे तरीके से अपने होटल में पहुंच गया हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर आपको बकायदे बताया गया है कि 27 तारीख को कितने बजे आपको किस स्थान पर पहुंचना है, वहां आप पहुंच जाइए। जहां आप रुके हुए हैं तब तक और भी आपके साथी वहां पहुंच चुके होंगे रुकने के लिए, उनसे मित्रता कीजिए, मस्ती के साथ आप सुबह उस स्थान पर पहुंचिए, ब्रेकफास्ट कीजिए और इसके बाद आइए, हम सब मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे बदलाव के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए। तो दोस्तों, एकेडमी की ओर से मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, आपकी यात्रा सफल हो। आइए मेरी बातों को फॉलो कीजिए और इसका लुत्फ उठाइए। दोस्तों, एक सूचना मुझे और अपने स्टूडेंट्स को देनी है, वो ये है कि लगातार मुझसे कहा जाता था कि सर ऐसे कैसे लिखें, इस पर आप कुछ हमें बताइए, और आंसर राइटिंग कैसे करें, इस पर हमें कुछ बताइए। तो कल हम लोगों ने YouTube पर एक लेक्चर डाला है, मेरा ही लेक्चर है, हाउ टू सॉल्व लेटेस्ट UPSC मेंस एसे क्वेश्चन। FEIS पर जब जाएंगे आपको तो मिल जाएगा, हाउ टू सॉल्व लेटेस्ट UPSC मेंस एसे क्वेश्चन। UPSC का भी एग्जाम हुआ मेंस का, उसमें ऐसे पूछे गए, तो उसमें से मैंने एक ऐसे को उठाया है और फिर बताया है कि इसे आप कैसे लिखेंगे। और अपनी ओर से मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह लेक्चर पसंद आएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा वक्त निकालें और इसे देखें, डेफिनेटली आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं सीधे मुख्य विषय पर, उच्च शिक्षा में प्रवेश को लेकर के। आप सब इससे वाकिफ हो ही गए होंगे कि जो हमारे देश के जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब उनमें एडमिशन आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से नहीं होगा, उसके लिए अलग से एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पर आधारित होगा। मैं अब पता नहीं आप इसे किस रूप में लेते हैं, लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूं। उसका कारण यह है कि, और इसके पीछे सरकार ने अपनी ये बात भी कही, आयोग ने ये बात कही है कि खासकर देखिए, एक तो CBSE एग्जाम लेती है, इसके बाद हमारे राज्यों के जो अपने मंडल हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल, वो एग्जाम लेते हैं, तो ये देखा गया है कि जो स्टेट के आयोग होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मार्क्स देते हैं, जबकि योग्यता वैसी नहीं होती। और उसका पर्पज यही होता है कि इन्हें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए। सोच करके देखिए कि पिछली बार कई सब्जेक्ट में और दिल्ली के कई कॉलेजेस की हालत ये हो गई थी कि 100% कट ऑफ मार्क्स होता था, 100% कट ऑफ मार्क्स। क्या सच में किसी को इतने नंबर मिल सकते हैं? चलिए मिले होंगे भाई, ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए हायर एजुकेशन के मामले में संकट पैदा हो गया था। लोगों के दिमाग में डाउट होने लगा था कि मार्क्स को लेकर के, 12th के मार्क्स को लेकर। तो ये एंट्रेंस की अब ये पद्धति निकाली गई है जो नेक्स्ट ईयर से लागू हो जाएगी। एक अच्छी बात इसमें यह है कि सभी तो एक तो जो टेस्ट होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और फिर उसमें कुछ ऐसे विषय रखे गए जैसे कि जनरल नॉलेज का कोई कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, तो इस तरह की चीजें उसमें रखी गई हैं। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस तैयारी करने के लिए ये बड़ा आपका बहुत अच्छा एक पूर्व अभ्यास हो जाएगा। देखिए, जो इंजीनियरिंग में जाते हैं, जो मेडिकल में जाते हैं, वो तो प्रवेश परीक्षा दे करके जाते हैं, लेकिन जो दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हैं, जैसे कॉमर्स ब्रांच के हैं, आर्ट्स ब्रांच के हैं, तो उन्हें इस तरह की कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ती। कुछ एक कॉलेजेस में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ज्यादातर में नहीं है। और वो सिविल सर्विस देने आ जाते हैं और यहां से उनकी बिल्कुल शुरुआत होती है, जबकि जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो पहले से इसका अनुभव लिए हुए होते हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था होने वाली है, और खासकर हमारे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत मुझे लगता है कि यह बहुत मदद करेगी, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे विरोध वाली बातें भी कही जा रही हैं कि इससे तो बहुत लोगों को एडमिशन नहीं मिल सकेगा, तो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे, वो बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। तो इसके आंसर के रूप में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 12th के से पहले ही कुछ बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के कोर्सेज की शुरुआत की जा चुकी है। मतलब जब तक आप 12th करेंगे तब कुछ प्रोफेशनल कोर्स आप कर चुके होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं भी मिल रहा है तब भी आपके पास एक प्रोफेशनल, आपके लिए क्वालिफिकेशन जैसी कोई चीज होगी जिसके आधार पर आपको नौकरी मिल सकती है। इसलिए अपने दिमाग में ये बात क्लियर रखें कि इससे कोई बहुत बड़ी बाधा उनको नहीं उत्पन्न होने वाली है जो अन्यथा उच्च शिक्षा में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, इसके कारण नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, खासकर अगर विदेशों में आप देखें तो जो हायर एजुकेशन है वो काफ़ी महंगी ही रखी गई है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ही रखी गई है, ताकि जो पाना चाहते हैं, जो कुछ और करना चाहते हैं, वो हायर एजुकेशन पाएं। और इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में 12th तक उन्हें कुछ प्रोफेशनल जानकारियां, प्रोफेशनल ज्ञान, स्किल्स देने की कोशिश की गई है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: नीरज अरोड़ा, सोनल वानखड़े पुणे से, पुलकित उषा सरकार दिल्ली से, और सीतांजलि बिस्वाल ओडिशा से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।